मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 2 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों स्वागत करता हूं अनस सविता का जो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं वायु की दिशा डायरेक्शन ऑफ विंड्स इस पर कुछ मूलभूत बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी घटनाओं को समाचारों को देख लेते हैं और आज दूसरी घटनाओं की संख्या काफी अधिक भी है। दोस्तों, आपने अभी देखा कि किस तरीके से सरकार ने कल सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जो पहले घोषणा की थी, जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की, उसी में से एक छोटे से हिस्से को मंजूरी दी। देखिए, जो कैबिनेट होती है सही मायने में फंक्शनल तौर पर अगर आप देखें तो वही सरकार होती है। सारे निर्णय कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। कल जो निर्णय लिए गए हैं, देखिए उनका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से है, चाहे वह खरीफ फसलों की कीमत, न्यूनतम कीमत की बात हो, चाहे वो MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो हमारे उद्योग हैं उनकी परिभाषा को बदलने की बात हो, चाहे रेहड़ी वालों को लोन देने की बात हो, किसानों के बारे में कुछ और निर्णय लेने हो, इन सब का संबंध चूंकि अर्थव्यवस्था से है इसीलिए जो निर्णय लिया है वो कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति ने लिया ही आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिविल सर्विस में इस तरह के बारीक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 3 साल पहले पूछा भी गया है ना, चूंकि आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है तो आर्थिक मामलों की जो कमेटी है उसने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या बदली गई है MSME की, ये इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहां आपका स्मरण दिलाना चाहूंगा कि ये जो MSME है, देखिए एम का मतलब है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, एस का मतलब है स्मॉल यानी कि लघु, और फिर जो एम है उसका मतलब है मीडियम और ई का मतलब है इंटरप्राइजेस। सन 2007 में इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया था और इसी नाम से मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME 2007 में, इसके महत्व को आप समझ सकते हैं, राइट? तो अभी जो इसकी डेफिनेशन बदली गई है उसके 2 आधार हैं। पहला यह है कि उनमें इन्वेस्टमेंट कितना है यानी कि कितना निवेश किया गया है, और दूसरा है कि उनका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर का मतलब साल भर वो कितना लेन देन कर रहे हैं। तो रिपीट मैं कर रहा हूं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो माइक्रो इंडस्ट्री है, सूक्ष्म इंडस्ट्री, उनके लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ है, और जो मीडियम इंडस्ट्री है उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए है। अखबारों में आज आप पढ़ रहे होंगे कि 250 करोड़ रुपए वाले तक को इसका लाभ मिलेगा, तो ये अलग अलग स्लैब हैं, चूंकि हाईएस्ट है तो इसीलिए अखबार में ये लिखा जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसी के साथ जुड़ी हुई है, अखबारों में उसे बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है, खैर वो अखबार का पर्पज सिविल सर्विस की तैयारी कराना नहीं है, वह दोस्तों चैंपियंस नाम के प्लेटफॉर्म की शुरुआत करना। चैंपियंस, इसका नाम है चैंपियंस, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है और ये MSME को मदद करने के लिए तैयार किया गया है। आप कहेंगे चैंपियंस नाम क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे पर्पज जो मुझे जान पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि जो लोग इस क्षेत्र में इंटरप्राइज प्रीप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, उनकी भी तलाश ये करेगा और उन्हें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो उद्योग के चैंपियन बन सके। तो ये चैंपियन प्लेटफॉर्म है, ये खासकर इस क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनकी अलग अलग तरीके से मदद करेगा। इसी प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की गई है, जिसे आप सिंगल विंडो कह सकते हैं। उनके फाइनेंस की जरूरत हो, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको सरकार रेगुलेटरी, आप जानते हैं सरकार से बहुत सारी अनुमतियों की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उन्हें कोई नई सलाह चाहिए, उनकी जो शिकायतें होती हैं श्रम से संबंधित समस्याएं हैं, तो ये जितनी भी समस्याएं होंगी उनके निदान यहां चैंपियन प्लेटफॉर्म पर उन्हें मिल सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत है और हो सकता है कि चैंपियन प्लेटफॉर्म के नाम से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में कुछ पूछ भी लिया जाए, तो आपके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए। दोस्तों, अमेरिका से जुड़ी हुई दो खबरें हैं। पहला तो यह है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कैसे जबरदस्त रूप से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसका कारण यही है कि वहां एक जो ब्लैक, जो काला व्यक्ति था, एक नस्लवाद यहां दिखाई दे रहा है। वो एक नकली नोट के जरिए कुछ सामान खरीद रहा होगा, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और बाद में फिर एक वीडियो वायरल हुआ कि पुलिस वाला अपने घुटने से उस व्यक्ति के गले को दबा रहा है, और बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब ये वीडियो फैला और वायरल हुआ तो पूरा का पूरा अमेरिका में एक तरह से हिंसक वारदातें हो रही हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री भी नस्लवाद के कहीं ना कहीं चपेट में है, और बीच बीच में इस तरह की और भी घटनाएं होती रहती, लेकिन जितने व्यापक स्तर पर हो रहा है ये बहुत सालों के बाद पहली बार देखने को आ रहा है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी हुई एक और भी खबर है, जो कल भी थी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे अमेरिका ने अपने को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि अपना संबंध खत्म कर लिया है। वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो अपना पैसा धन देता था, अब वो बट नेचुरल लेकिन नहीं देगा। और आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से अमेरिका WHO की आलोचना कर रहा था कि उसने भी कोरोना के मामले में चीन का बहुत ज्यादा फेवर किया है, तो अब उसने सीधे सीधे अपने को वहां से निकाल लिया है। एक और खबर है दोस्तों, खरीफ फसलों के न्यूनतम मूल्य को लेकर के। इस पर मैंने बहुत पहले बात की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आयोग होता है उसकी सिफारिश पर, इसी से संबंधित आयोग है जो खरीफ फसलों के मूल्य और लागत को लेकर के सरकार को रिकमेंड करता है, और किस तरह से तीन तरह की उसकी रिकमेंडेशन है, उनमें से किसी एक के आधार पर सरकार निर्णय लेती है। तो सरकार ने खरीफ फसलों के मूल्य डिक्लेयर कर दिए हैं। खासकर इसको लेकर के डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि किसका कितना मूल्य है, लेकिन जो वृद्धि की गई है वो 50% से लेकर के 83% तक की वृद्धि है। लेकिन 50 से 83% की वृद्धि ये नहीं है कि जो पिछले साल जो कीमत थी जैसे 1,000 रुपये क्विंटल, तो उसे 50% बढ़ाकर के 1,500 कर दिया गया है। नहीं, कृषि पर जो लागत आती है उस लागत में, जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ पर 1,000 रुपये की लागत आई, तो उससे जो उत्पादन होगा तो उनको 1,500 रुपये मिल जाए, इस तरीके से फिक्स किया गया है। 1,500 रुपये से लेकर के आप कह लीजिए कि 1,800 रुपये तक 50 से 83% की वृद्धि की गई है। लेकिन ये बहुत ही डिबेटेबल होता है, इसमें बहुत ही विवाद की गुंजाइश रहती है, क्योंकि आप जो लागत कैलकुलेट कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसान की लागत में आप क्या क्या शामिल कर रहे हैं। और इसके बारे में कुछ ही दिनों पहले, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 सप्ताह पहले मैंने विस्तार से बात की थी। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है वायु की दिशा। इस विषय को मैंने क्यों चुना है, देखिए मानसून आ चुका है, कल केरल में मानसून पहुंच गया और हमारे अखबार आज इससे भरे पड़े हैं। उनको पढ़ने के बाद बड़ी राहत सी मिलती है, लगता है कि कब भले ही केरल में पहुंचा हो मानसून, लेकिन लगता है कि वो भोपाल भी पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार भी पहुंच गया है ना। जब उम्मीद बंधती है तो कुछ इसी तरह का आभास और एहसास होता है। केरल पहुंच गया है, चलिए हमारे यहां भी आ जाएगा। कुछ अखबारों ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया भी है कि ये किस किस शहर में कब कब पहुंचेगा, जो बड़े बड़े शहर है ना, जैसे अभी केरल पहुंचा है, केरल के बाद फिर वो महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, महाराष्ट्र के बाद फिर वो मध्य प्रदेश में आएगा, इसके बाद फिर वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पहुंचेगा, और एक तरफ दूसरा जो मानसून है जो पश्चिम बंगाल से घुसेगा, तो वो पता लगेगा कि 5 जून को वो रायपुर पहुंच जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। इस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी डेट दिखाई हुई है। दोस्तों, ये जो डेट है ये याद करने की डेट नहीं है, ये समझने की डेट है। अगर आपके दिमाग में अपने देश का नक्शा बिल्कुल साफ है, क्लियर है, जो होना ही चाहिए, और आप हवा की दिशा के सिद्धांत को जानते हैं, तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए पढ़ना, जानना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्षमता इससे बहुत अधिक विकसित हो जाएगी। कल के न्यूज में, रेडियो न्यूज में आपने एक वाक्य सुना होगा, ध्यान दीजिए, मैं उस वाक्य को यहां दोहरा रहा हूं कि अरब सागर के ऊपर, याद रखिए, अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। अब आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, अरब सागर है ना, न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि एक फिर से एक तूफान आने को हो गया है जिसका नाम निसर्ग, जैसे अभी हम एम्फन से हम जूझ रहे थे, तो एम्फन से जो हम जूझ रहे थे, तो देखिए वो अग नक्शे पर जाइए, तो उसमें हमारा ईस्ट कोस्ट था, आंध्र प्रदेश पर उसका असर हुआ, पश्चिम बंगाल पर असर हुआ, उड़ीसा पर असर हुआ, ईस्ट कोस्ट। तो हमारा जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट मूलतः बंगाल की खाड़ी में है, और अब ये जो बन रहा है ये अरब सागर में है, तो अरब सागर में तूफान तैयार हो रहा है, और जो तूफान तैयार हो रहा है वो किसको हिट करेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, इस वाले हिस्से को, जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट को हिट करेगा, वहां उसका दुष्प्रभाव दिखाई देगा। तो अब यहां जो दिया हुआ है कि अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र, दोस्तों ये जो कम दबाव और अधिक दबाव वाला जो सिद्धांत है, यही सही मायने में वायु की दिशा का निर्धारण करता है। वायु की दिशा का निर्धारण, मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि इस पर बहुत ही विस्तार के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड किया गया। मानसून के ऊपर तो है ही, साथ ही साथ वायु की दिशा के ऊपर है, और फिर जो विंड्स के बारे में अलग से बताए गए हैं, है ना, कि वेस्टर्ली यानी कि पछुआ हवाएं किसे कहते हैं, है ना, जो व्यापारिक हवाएं कौन सी होती हैं, स्थल समीर और जल समीर क्या होते हैं। प्लीज आप आज उन लेक्चर्स को सुन लीजिए और देखिए फिर अखबारों में जो अभी चीजें आएंगी कितने आराम से आपके समझ में आती हैं। तो देखिए, न्यूज में था कम दबाव का क्षेत्र, अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। तो दोस्तों ये होता क्या है, अब आप देखिए कि हमारे यहां जो अभी मानसून आया है ये गर्मी के बाद आया है, है ना, गर्मी, अभी गर्मी पड़ रही थी, अब ये मानसून आ गया। तो होता क्या है, देखिए कि जब गर्मी पड़ती है यानी कि तापमान बढ़ता है, इसे आप ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहेंगे तापमान, जब तापमान अधिक होता है तो जो हवा है वो हवा गर्म होगी, और जब हवा गर्म होगी तो सीधी सी बात है कि वो हल्की हो जाएगी, जो भी चीज गर्म होगी सूख जाएगी वो हल्की तो होगी ना, आपका कपड़ा पानी में डूबा हुआ है तो उसका वजन अधिक है, लेकिन कपड़े को सुखा करके फिर तौलिए तो वो कपड़ा हल्का हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर की जो हवा, आप कह लीजिए कि जो नमी थी, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में नमी थी, अदरवाइज जो पानी है वो उड़ गया तो हल्की हो गई। तो जब गर्मी खूब पड़ती है तो जो हवा है वो सूखी हो जाती है, आप कह लीजिए, और जब सूखी हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और जब हल्की हो जाती है तो ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है। अब हवा तो ऊपर चली गई लेकिन पृथ्वी तो है ना, वातावरण तो है, तो जो वो वातावरण है, चूंकि अब वहां हवा की मात्रा कम हो गई है तो हवा का दबाव कम हो गया है, और ये कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव का क्षेत्र यानी कि आप इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ढलान तैयार हो गई है। और हवाओं के बारे में एक बहुत सिंपल सी बात है कि हवाएं अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती हैं। हमारा चूंकि पूरा का पूरा राष्ट्र कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, तो अब हवाएं इस दिशा में आ रही हैं, हिंद महासागर से हवाएं चल रही हैं, उसमें से एक ब्रांच जो है ना अरब सागर की तरफ चली जाती है जो केरल होकर के पहुंच गया है, और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है जो उधर कलकत्ता वगैरह से होकर के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। तो दो धाराएं हमारे यहां मानसून की प्रवेश करती हैं भारत में, और धीरे धीरे वो ट्रेवल करते करते आगे की दिशाओं में बढ़ती चली जाती है। इस आधार पर आप उन डेट्स को जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कितना आसान है, कितना सरल है और कितना मजेदार है। तो दोस्तों आप इसे इस रूप में पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सत्यवर्धन पांडे हजारीबाग झारखंड से, शिवानी शर्मा, सूरज कुमार, सौरभ कुमार नालंदा बिहार से, स्वाति त्रिपाठी, विजय कुमार और सोनू दिनकर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।